सुभाष जी ने कांपते हाथों से उस फोन को पकड़ा, जैसे वो उसे लेना ना चाहते हों या उनके अंदर इतनी ताकत ना बची हो कि उस फोन के बोझ को संभाल सके। मन घबराने लगा था उनका। जिस तरह से सुयश जी के भाव थे, किसी अप्रत्याशित और अप्रिय घटना के घटित होने की आशंका से उनका मन दहल गया। उन्होंने अपने दिल को मजबूत किया और व्हाट्सएप पर आज उस आखिरी मैसेज को ओपन कर दिया जो एक्सीडेंट से पहले उनके पास आया था। पर सावित्री जी की चिंता और घर पहुंचने की जल्दी में उन्होंने उस पर कुछ खास ध्यान ना देते हुए उसे एक बार देखा तक नहीं था। मैसेज में एक वीडियो थी जिसे देखने से सुभाष जी का मन घबरा रहा था। उन्होंने अपनी कांपती उंगली से उस वीडियो को क्लिक कर दिया और कुछ सेकंड बाद ही उसमें कुछ नजर आने लगा, पर कुछ भी साफ साफ नहीं दिख रहा था। इसलिए सुभाष जी गौर से उस वीडियो को देखने लगे। जिस जगह वो वीडियो बनाई गई थी वहां अंधेरा था, जिसमें हल्की सी रोशनी नजर आ रही थी। सुभाष जी ने उस जगह पर नजर आती चीजों को, जो ना के बराबर ही दिख रही थी, उन्हें देखा तो पाया कि वो जगह उन्हीं का रूम था। ये देखकर उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वीडियो में एक आदमी नजर आ रहा था जो बेड के पास खड़ा था, पर उसकी पीठ ही दिख रही थी, चेहरा नहीं नजर आ रहा था। कुछ सेकंड बाद उस वीडियो से एक जानी पहचानी सी पर घबराई हुई सी आवाज आई, अमर तुम यहां क्यों आए? तुम जानते हो ना वो किसी भी वक्त आते ही होंगे। अगर उन्होंने तुम्हें यहां हमारे बेडरूम में देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इतने वक्त से हम जिस हकीकत को छुपाते आ रहे हैं वो उनके सामने आ जाएगा और अपनी मंजिल के इतने पास आकर हमारा बना बनाया प्लान बिगड़ जाएगा। अभी शान भी घर पर ही है, अगर वो उठकर हमें ढूंढते हुए यहां आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अभी हम हमारे रिश्ते को सबके सामने नहीं ला सकते। इससे पहले कि कोई हमें साथ देखे और सब खत्म हो, तुम यहां से चले जाओ। ये आवाज और बातें सुनकर सुभाष जी की आंखें अविश्वास से फैल गईं, चेहरे पर अजीब के भाव उभर आए और लबों से धीमी सी मायूसी भरी आवाज निकल गई, सावित्री जी। वो अभी इस सदमे से ही उभर नहीं पाए थे कि एक बार फिर वीडियो से आवाज आई, जिसने उनके होश ही उड़ा दिए और वो उस शख्स के चेहरे को देखने की कोशिश करने लगे। सावित्री, अब ना तो तुम्हें अपने उस पति और मेरे दिखावटी दोस्त से डरने की जरूरत है और ना ही हमें अब हमारा रिश्ता छुपाकर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे रास्ते के सबसे बड़े कांटे को मैंने ठिकाने लगाने का इंतजाम कर लिया है। क्या मतलब? सावित्री जी की कुछ हैरानी भरी आवाज आई। उनका सवाल सुनकर अमर जी ने जहरीली हंसी हंसते हुए कहा, मतलब ये जाने मन कि आज मैंने सुभाष के चैप्टर को हमेशा हमेशा के लिए क्लोज कर दिया है। पहले मैंने खुद अपने प्ले की स्क्रिप्ट को बेचा और सारा ब्लेम उसके सर पर डाल दिया और उससे अपनी दोस्ती और पार्टनरशिप तोड़कर उसको धक्के मारकर अपने थिएटर और जिंदगी से बाहर निकाल दिया। वो बेचारा तो समझ ही नहीं पाया होगा कि आखिर उसके साथ ये हुआ क्या, कैसे, और ना ही उसे कभी ये पता चलेगा कि ये सब मेरा प्लान था, क्योंकि अब तक तो वो इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुका होगा। मैंने उसे हमारे बीच से हटाने का इंतजाम कर दिया है, क्योंकि अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता। तुम्हें उस फटीचर के साथ इस हाल में देखना अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मैं हमारे रास्ते के कांटे को हमेशा हमेशा के लिए हटाकर तुम्हें अपना बनाने आया हूं। अब हमारे प्यार के बीच कोई भी नहीं आएगा। अब बिजनेस पर सिर्फ मेरा अधिकार होगा और तुम भी सिर्फ और सिर्फ मेरी बनकर रहोगी। अमर जी ने अपनी बात पूरी की, फिर कुछ पल वहां खामोशी छा गई। कुछ पल बाद सावित्री जी की चिंता भरी आवाज आई, अमर अगर किसी को पता चल गया कि ये सब तुमने किया है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तुमसे सब कुछ छिन जाएगा, और अगर सुभाष जी मारने के इल्जाम में तुम्हें जेल हो गई तो हम क्या करेंगे? अमर जी ने बड़ी ही बेफिक्री से जवाब दिया, जानू तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने इतनी सफाई से इस काम को अंजाम दिया है कि किसी को शक भी नहीं हो सकता कि इन सबके पीछे मैं हो सकता हूँ। तुम ये सब बातें छोड़ो और मेरी बाहों में समा जाओ। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि कब से मैं इस पल के इंतजार में था जब बिना किसी डर के मैं तुम्हें प्यार कर सकूं। अमर जी अपनी बाहों को फैलाते हुए थोड़ा आगे हुए पर फिर रुक गए, जैसे किसी ने उन्हें रोक लिया हो। इसके साथ ही सावित्री जी की चिंता भरी आवाज आई, नहीं अमर, इतनी जल्दी कामयाबी की खुशियां मनाना ठीक नहीं है। अगर सुभाष जिंदा बच गया और उसके सामने हमारा रिश्ता आ गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। फिर अभी मैं उसकी पत्नी हूं, ये सब करना ठीक नहीं है। और तुम भी तो शादीशुदा हो,
अगर ऐसे में हम साथ आते हैं तो हमारा रिश्ता नाजायज कहलाएगा, और मैं तुम्हारी पत्नी बनकर तुम्हें पाना चाहती हूँ। रखेल बनकर बस तुम्हारे शरीर की जरूरतों को पूरा करने का साधन नहीं बनना चाहती। अमर जी की बात पर अमर जी कुछ पल रुके जरूर, पर फिर उन्होंने आगे बढ़कर उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। अब वीडियो में बस अंधेरा ही नजर आ रहा था, और उस अंधेरे को चीरते हुए अमर जी की आवाज आई। जाने मन, कितना सोचती हो तुम। मैंने सुभाष को ऊपर पहुंचाने का इतना जबरदस्त इंतजाम किया है कि उस एक्सीडेंट से वो क्या उसके फरिश्ते भी नहीं बचा सकते उसे। अब तुम सुभाष के बारे में सोचना और उसकी चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि अब तक वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका होगा। तो तुम अब उसकी विधवा हुई, और रही बात देवकी जी की, तो बस आज की रात, और उन्हें भी मैं हमारे रास्ते से हटा दूंगा, और फिर हम दोनों को साथ होने से कोई रोक नहीं सकेगा। दुनिया की नजरों में हम दोनों तन्हा दुखी लोग एक दूसरे का सहारा बनेंगे, और किसी को जरा भी शक नहीं होगा कि ये सब हमारा ही प्लान था। मैंने सब प्लान कर लिया है, और अपने प्लान को अंजाम तक पहुंचाने का इंतजाम भी कर चुका हूँ। आज की रात हम दोनों की आजादी की रात है। हम दोनों को इस जबरदस्ती के रिश्ते के बोझ से आजादी मिल जाएगी, और हम हमेशा साथ रहेंगे। एक बार फिर वहां खामोशी छा गई। कुछ सेकंड बाद अमर जी की मदहोशी भरी आवाज आई। मैंने तुम्हें पाने और अपना बनाने के लिए इतना कुछ किया, अपने ही दोस्त को धोखे से फंसाया और उसको मरवा दिया, अपनी पत्नी को भी अपने रास्ते से हटाने को तैयार हो गया हूँ। अब इन सब के बदले मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए, और कितना तड़पाओगी मुझे। कद से मेरे दिल में तुम्हें अपना बनाने और जी भरकर प्यार करने के अरमान मचल रहे हैं। अब जाकर मौका आया है, अब तो मुझे खुद को महसूस करने दो। ये रात हमारी आजादी की रात है, क्यों ना इस खुशी की रात हम दो जिस्म से एक जान हो जाएं। अमर जी चुप हुए तो सावित्री जी की धीमी सी बिखरी हुई सी आवाज आई। मैं तो कब से इस पल का इंतजार कर रही हूँ, सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी तो तड़प रही हूँ तुम्हें महसूस करने के लिए। और अब तो मुझे पकड़े जाने का डर भी नहीं, मैं भी अब पूरी तरह से तुम्हारी बनना चाहती हूँ। पर अब भी एक परेशानी है, सुभाष को तो तुमने हमारे रास्ते से हटा दिया, पर शान उसका क्या करोगे। एक बार तुम्हें अपना बना लूं, फिर मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चला जाऊंगा, और इस घर को आग लगा देंगे जिसमें तुम्हारा वो बेटा भी स्वाहा हो जाएगा। फिर हम अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे जिसमें तुम, मैं, अर्जुन और आत्या होंगे। सावित्री जी ने हुंकारी भरी। इसके बाद इस तरफ से किसी की कोई आवाज नहीं आई। कुछ पल बाद हल्की हल्की सिसकी और कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी, जिसे सुनकर ये अंदेशा लगाना मुश्किल नहीं था कि उस अंधेरे कमरे में मौजूद दोनों लोगों के बीच अब क्या हो रहा था। सुभाष जी इससे आगे वीडियो ना देख सके, और उन्होंने उसे तुरंत ही बंद कर दिया। उन्हें अब भी अपने आंखों देखे और कानों सुने पर विश्वास नहीं हो रहा था। आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे थे, चेहरा दर्द से सना था। ये कड़वी हकीकत उनके बर्दाश्त से बाहर थी।
कुछ पल वो शॉक्ड से खड़े अपने हाथ में मौजूद फोन को घूरते रहे, फिर उन्होंने इनकार में सर हिलाते हुए बड़बड़ाते हुए कहा, ये सब सच नहीं हो सकता। अमर हमारे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकता। सावित्री जी हमसे बहुत प्यार करती थीं, वो हमारे पीठ पीछे ये सब नहीं कर सकती। ये सब झूठ है, किसी की घटिया चाल है। हम नहीं विश्वास करते इस वीडियो पर, ये सब छलावा है। हमें भ्रमित करके अपनी पत्नी और दोस्त के खिलाफ करने के लिए किसी ने जानबूझकर ये सब किया है। हम जाकर ढूंढेंगे सावित्री जी को। हमारा दिल कहता है कि वो हमारे साथ बेवफाई नहीं कर सकती। जरूर ये किसी की सोची समझी साजिश है। वो मुसीबत में है, हम जाकर उन्हें ढूंढेंगे और अमर से भी बात करेंगे। हम सब सच पता लगा लेंगे। सुभाष जी बड़बड़ाते हुए खुद को शायद विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि ये सच नहीं है, पर उनकी लड़खड़ाती जुबान और आंखों में झिलमिलाते आंसू गवाह थे कि कहीं ना कहीं उनका मन भी इस सच्चाई को स्वीकार कर चुका है, और भय है उसे कि कहीं ये सब हकीकत हुई तो वो इस धोखे से टूटकर बिखर जाएंगे। टू बी कंटिन्यूड।